लिखती है। ठीक, अच्छा भाई मैं एक कमर्शियल ले लूं क्योंकि आमिर मुझे कह के गए हैं और शाजिया ने भी फायर कर देना है मुझे ना, क्या
जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुंचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477 02 2023 6 2 2 3
1034। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9054551666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
एशियन फूड सेंटर दिया सारिया ही लोकेशन ते 12 मार्च तो 23 मार्च तक लग चुकी है सिख न्यू ईयर अते होली सेल। वी पौंड स्वर्ण मल्टीग्रेन आटा 899, 300 ग्राम हैप्पी पनीर 429, 2 पौंड वाग बकरी टी 1099, 4 पौंड एशियन काला चना 599। इस तो अलावा ताजे फल फ्रूट सब्जियां दाला इंडिया वाले भांडे सारा कुछ अंडर वन रूफ ही मिलता है। सिख न्यू ईयर अते होली सेल एशियन फूड सेंटर दी सारिया ही लोकेशन ते कॉल एट 416-740-3262।
नहीं जी, खुश आमदेद आपको करना चाहती हूँ मैं एक दफा फिर से, और आपकी एक मुलाकात करवाना चाहती हूँ। मुलाकात मैं आपकी करवाऊंगी किससे जनाब? मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के नासिर साहब से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। रमजान के दिन अक्सर आपने नोट किया होगा कि बाज़ूकात कोई हम अच्छा का नाम सुन रहे होते हैं तो दिल पसीज जाता है, दिल नरम हो जाता है, इंसान की आंख में आंसू आ जाते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो बेख्तियार जब हम कहते हैं कि या कनाब तो या कनस्तईन, मैं तेरी इबादत करती हूँ तुझसे मदद चाहती हूँ। कुरान पाक पढ़ते हैं वहाँ पे जब हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान कौमों का जिक्र सुनते हैं या फरमाबरदार कौमों का जिक्र करते हैं या अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों का जिक्र करते हैं तो ख्वाहिश आती है, तो दिल करता है कि या अल्लाह ताला मुझे भी उसमें शामिल करते। उठते बैठते सोते जागते इंसान हर करवट के साथ अल्लाह से मांगता है। और रमजान के महीने में यकीनन जैसे अल्लाह ताला अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, हम भी कोशिश करते हैं कि अल्लाह के दिए में से। और एक बात याद रखिएगा, खुदा की कसम खा के मैं आपसे कहती हूँ कि अल्लाह का वादा है कि जब हम अल्लाह के रास्ते में, देर आर टाइम्स के हाथ बंधे होते हैं, लगता है कि कल का दिन पता नहीं चढ़ना है कि नहीं चढ़ना, खुदा की कसम फिर भी अगला दिन वो पैसे भी आ जाते हैं, वो हमारे इम्तिहान की घड़ी होती। आई हैव बीन थ्रू दिस मेनी टाइम्स। मेरे साथ जनाब मुस्लिम वेलफेयर सेंटर, और मैं मुस्लिम वेलफेयर सेंटर की इसलिए भी मुतकिद हूँ कि आप अखबार उठा के देख लीजिएगा, कोई भी आप अखबार उठाएं आपको पता चलेगा कितने फूड बैंक्स हैं, कितनी खुराक की कमी है, कितने लोग हैं जो इन फूड बैंक्स के ऊपर फूड लेने जाते हैं। अब आप किसी भी बड़े स्टोर पे, छोटे स्टोर पे चले जाएं, हर स्टोर आपको देखें उन्होंने कितने फूड की फूड बास्केट्स लगाई हुई है। एंड मुस्लिम वेलफेयर सेंटर दे आर डूइंग दिस जॉब, बेशुमार वॉलेंटियर्स हैं। नासिर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, आपके ठीक है?
अल्लाह का बहुत शुक्र है। सॉरी, आपने भी देखा होगा जिंदगी के बदलते हालात, और बाज़ूकात इंसान ये समझते हुए भी कहता है कि पता नहीं मेरे अपने अखराजात, और बड़ी अनसर्टन सिचुएशन है, मगर अल्लाह का वादा है कि तुम मेरे रास्ते में दो, मैं तुम्हारे जो दिया हुआ उसको 70 गुना बढ़ा के तुमको दूंगा, बस ये सौदा करते चले जाएं। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के बारे में क्विकली हमें बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो नया एक सेटअप शुरू होने जा रहा है जिसमें अगर और मुझे पता है मेरी ये बात बड़ी आपको क्रूअल लगेगी कि ओल्ड होम के बारे में, बट इट इज हैपनिंग, मगर ये वो ओल्ड होम जहाँ पे आपके और हमारे, या मैं अगर चली जाऊंगी तो मेरे पीछे वालों को फिक्र नहीं करना चाहिए, उनको हलाल फूड मिलेगी, उनको وہ چیزیں ملیں گی جو میری روایات سے مطابق ہیں. تو ناصر پلیز ہمیں بتائیے کہ واٹ از یور نیو پروجیکٹ اینڈ یہ جو نیا ایک راستہ ملا ہے وہ کیا ہے.
السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا سسٹر ہمیں یہاں پہ بتانے کا. مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کر لوں کہ ایم ڈبلیو سی جو ہے مسلم ویلفیئر کینیڈا, وہ لاسٹ 30 سال سے یہاں پہ ہیومینٹی کی خدمت کر رہی ہے, اور ابھی ہم ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لانگ ٹرم کیئر. یہ لانگ ٹرم کیئر فیسلٹی جو ہماری ہے یہ بیسیکلی ایک لانگ ٹرم جس ڈسیبلٹی ہوتی ہے کوئی بھی موسٹلی جو ایجنگ والے لوگ ہیں وہ ان کے لیے ہے, یا کوئی چھوٹی عمر کا جن کو لانگ ٹرم ڈسیبلٹی ہے ان کو کسی کی کیئر کی ضرورت ہے, یہ بیسیکلی ایک لانگ ٹرم کیئر ہوم ہوگا. اور یہ ہم بنا رہے ہیں ابھی یہاں پہ کلٹس میں, یہ نارتھ آف آشوا ہے اور اس میں اور یہ 192 بیڈ کا ہے, اور اس کے اندر یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ فرسٹ جو ہے وہ ہمارا مسلم ایک چیریٹی جو ہے وہ بنا رہی ہے, اور اس میں کلچرلی اور ریلیجیسلی سینسیٹیو ہوگا. اس کے اندر ہماری جیسے آپ نے فرمایا ہے ابھی عرفا صاحب نے کہ یہ ہماری روایات کے مطابق ہوگا, جس میں اذان نماز اور حلال چیزیں سرو ہوں گی, اور جہاں جو ہمارے پیارے ہیں اسپیشل جو سینئر ہیں ان کے لیے ہر طرح کی جو کہ ان کی کلچر اور ان کے جو ریلیجیس ہے چاہے وہ مسلم ہے یا جو بھی نان مسلم کے لیے بھی ہم اس میں اکوموڈیٹ کریں گے, لیکن موسٹلی ہم فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے مسلم جو بھی بزرگ ہیں یا جو بھی ہمارے سینئرز ہیں جن کو یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جب ان کو لاسٹ ایج میں ہو اور ان کو ان کے سراؤنڈنگ میں اسپیشل جو جس کلچر میں وہ بڑے ہیں پلے ہیں اور جو اپنا اسپیشلی جو دین ہے جو اس کے مطابق ان کو ہر چیز اویلیبل ہوگی وہاں پہ. اور یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا یہ 192 بیڈ کا ہے, اور اس کی جو ابھی جو لاگت آ رہی ہے وہ تقریباً 100 ملین پلس ہے, اور اس کے اوپر ابھی ہماری الحمدللہ ہم نے 5 ایکڑ جو لینڈ لی ہے وہ بالکل ہائی وے 2 کے اوپر ہے, وہ یہ منسٹری آف لانگ ٹرم کیئر اور انٹیریو گورنمنٹ سے اپروو ہے, اور ابھی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوگی الحمدللہ. اور یہ جو فیسلٹی ہے یہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ جو فرسٹ جو اس کی سروس اسٹارٹ ہوگی جو ہم ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ 2027 کے سمر مطلب سپٹمبر کے آس پاس میں یہ اپنی جو فیسلٹی ہے وہ انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دے گی.
مصیف ویلفیئر سینٹر کا آپ بتائیے کہ اگر آن لائن ڈونیشن ہے, میں ذاتی طور پہ آج آپ کو بتاتی ہوں, آج میں صبح پھنس گئی, مائی سسٹر کیم تو ہم ڈونیشن کر رہے تھے تو ہم نے ان کے وہ صدقات خیرات جو بھی تھا زکوٰۃ کے سیگمنٹ میں گئے, اور پھر زکوٰۃ کے سیگمنٹ میں سے ون ٹائم وغیرہ وغیرہ کر کے ہم پہنچ گئے. پھر میرے سے ایک بار غلطی ہوئی دو بار, تو پھر دیکھا باسکٹ میں تین چیزیں بھایا ہے, تین کیا ہو گیا, ہم تو ایک بھیج رہے تھے. اینی ویز مگر ابھی میں آفس میں آئی تو مجھے پتہ چلا تو ویری سمپل ای ٹرانسفر آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنے اکاؤنٹ پہ جائیں, ان کی ای میل ایڈریس کریں, ان کا فون نمبر ایڈ کریں, آپ ای ٹرانسفر کر دیجئے گا. آپ اگر آپ ڈیلی بیسس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں, $10 پر ڈے نکل جائیں میرے, مہینے کے $300 ایوری ڈے صدقہ نکل گیا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, قرآن پاک میں اس کا باقاعدہ ترجمہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو کوئکلی ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا, پھر میں آپ سے اجازت چاہوں.
جی, اس کا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں, وہ ہے mwcanada.org, اور اس کے اندر وہ نارمل ہم نے بڑا سمپل سا جیسے آپ نے فرمایا بھی کہ وہ شاپنگ سٹائل ہے کہ آپ کوئی بھی جتنے ہمارے پروگرامز کو وزٹ کر سکتے ہیں, جیسے ہم فوڈ میں کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں, اور پلس آپ اس میں لانگ ٹرم کیئر کا الگ سیکشن ہے تو اس کے اندر آپ کوئی بیڈ بھی اسپانسر کر سکتے ہیں, پورا مطلب پورا ایک جو روم اسپانسر کر سکتے ہیں آپ, اس میں مسجد کے اندر مسلح جیسے نیچے مسلح ہے اس مسلح آپ اسپانسر کر سکتے ہیں, ودو اسپانسر کر سکتے ہیں, ایسے آپ کے پاس آپشن اور جو بھی چیز بنے گی اس کے اوپر پلیک, جیسے ہاسپٹلس کے اندر پلیکس لگے ہوتے ہیں کہ ایز فار کوئی بندہ ایک روم اسپانسر کر رہا ہے اور وہ روم جو ہے وہ اس کے باہر جو ہے وہ پراپر اپنے فرض کر اپنے پیرنٹس کے نام پہ اسپانسر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے اوپر وہاں پراپر ایک وہ نیم پلیٹ جیسے فلیکس لگے ہوتے ہیں وہ بھی لگ سکتا ہے, اور آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور جو میں نے بتایا mwcanada.org ہے, یا آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں 416-754-8116, یا ای ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, وہ ہے ڈونیشن donation@mwcanada.org.
بہت شکریہ آپ کا, اور ایک بار پھر سے اپنا ایڈریس دے دیجیے پلیز.
हमारा एड्रेस है जो हेड ऑफिस का एड्रेस है वो है 100 मैक्लेमन एवेन्यू स्कार्जो एंड पोस्टल कोड है M1B5K1 और यूनिट हमारे पास है यूनिट नंबर 4 पे हमारा हेड ऑफिस है।
MWC मुस्लिम वेलफेयर सेंटर MWCanada.org पे अगर आप आए तो यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स। थैंक यू वेरी मच नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत
शुक्रिया। अबू जान खुदा का वास्ता, इस गाड़ी से तो दूसर एक गदा गाड़ी खरीदते, हर मोड़ पे रुक जाती है।
बच्चे परेशान क्यों होती हो, लाओ गाड़ी की चाबी दो, अभी लेकर जाता हूँ प्रीमियम ऑटो रिपेयर। गाड़ी की नब्ज देखकर खराबी की जड़ तक पहुँच जाएंगे।
मेरी सहेली ने भी कहा था
वहाँ पर कूलिंग सिस्टम, इंजन ट्यूनअप, 4 व्हील कंप्यूटर बैलेंस, ब्रेक्स, नए और पुराने टायर, साफ आयल फिल्टर, मुफ्त में चेंज, स्टार्टर अल्टरनेटर गारंटी के साथ ठीक करते हैं। बस इसके बाद तुम्हारी गाड़ी फर फर भागेगी। 21 मेलविक ड्राइव रिटोबिको, टेलीफोन 416-747-6800।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, अब मिसिसागा में दूसरी लोकेशन के साथ, रूट केनाल, वाइट टीथनिंग, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री, डेंटल क्राउन्स, विजडम टूथ रिमूवल, क्वालिटी डेंटल केयर पूरी फैमिली के लिए, एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स, वॉक इन एंड इमरजेंसी, एक्सेप्टिंग कनाडा डेंटल केयर प्लान। डेंटिस्ट्री ऑन रिजवे बाय डॉक्टर नाजिया रहमान, 3465 प्लेटेनियम ड्राइव, यूनिट 76, मिसिसागा, फोन 905-820-0900, 905-820-0900।
Assalamu alaikum. This is Imam Yusuf Fidat. In Pakistan's remotest villages, thousands of families have no access to clean drinking water. Impoverished children, including those who are deaf, are struggling to pursue their education. Families and their children still suffer the consequences of the floods and other natural disasters. Muslim Welfare Canada drills water wells, sponsors education, and is reconstructing homes in Pakistan. You can make a difference this Ramadan with your donation. Visit mwcanada.org/Pakistan. Your Sadaqa Jariya changes lives forever.
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲੇ ਫਲ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਮੱਛਲੀ ਅੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਤੇ ਸਸਤੇ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ, ਬੱਲੇ ਪਕੌੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ। ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ
ਸਵਾਗਪੁਰੋ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਟਾਲਾ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, 200 ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਸਕਾਰਪੋਰੋ, ਮਾਰਕਮ ਰੋਡ ਤੇ ਇੰਗਲਿੰਟਨ ਦਾ ਸੰਗਮ, ਫੋਨ 416-264-3111।
वेलकम बैक तमाम सामाईन जो हम सुन रहे हैं 770 AM डायरेक्ट प्रोग्राम साजो आवाज। जनाब कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा
मैंने कहा थोड़ा हंसना भी चाहिए, रोजे में जरूरत नहीं कि आप हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुस्कुरा लूं। तो तमाम सामीन को नाजीन को एक बार फिर खुशामदीद, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, आपका हमारा साथ वैसे तो डायल पर 7 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आप अगर हमारा रेडियो सुनना चाहते हैं और अभी भी सुनना चाहते हैं डायल के अलावा, तो 6478724900 हमारा नंबर है। हमारी वेबसाइट eawaz.com, वहां पर भी आप रेडियो सुन सकते हैं और टेलीविजन देख सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो टाइम हो गया है आप लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने का, और उसके लिए शाजिया मलिक साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आइए उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS क्या चक्कर है आजकल तुम, ये इसे नीले क्यों बन के आ रहे हो, ये क्यों कंजर्वेटिव बने हुए हो भाई तुम, क्या चक्कर क्या?
नीला कंजर्वेटिव नहीं है।
क्या है?
नीले के साथ
नीला भी है,
हल्का नीला भी है।
अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो हल्का हो गाढ़ा हो या कैसा भी हो ना, तो वो ये कलर इज
कंजर्वेटिव
विद कंजर्वेटिव। यस,
बस मैं उनको थोड़ा बैकअप कर रहा हूँ क्योंकि एक ही पॉइंट रह गया उनका पीछे। वो हो गए होंगे,
वो गायब हो गए, वो नंबर जो था वो भी पत्थर पत्थर हो
गए, पीछे हो गए। मैंने कहा कि थोड़ा सा उनको
बड़े 10 पॉइंट्स की लीड है, 15 पॉइंट,
मतलब मुझे अंदाजे नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पहले की दुनिया उनकी कुछ और थी। आप अगर देखे तो तैयारी हो चुकी थी, सूट सिल चुके थे, टाई वाई रेडी थी, स्पीच भी रेडी थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया और उसके बाद जो हालात सुनामी आया, बल्कि
सुनामी आया। तुम्हें पता है कि जो आज नैनोज का एक वो आया है, सर्वे भी आया है, उसमें ट्रूडो साहब इज लीविंग एज ऑल टाइम हाई एज प्राइम मिनिस्टर का जो फेवरेबल जो रेटिंग होता है ना।
ओह माय गॉड, जो पिछले 6 महीने पहले तो लोग इनको दे रहे थे। ये वो इमरान खान वाला सिचुएशन
है, ये
वो
सिचुएशन है
कि जब वो था 2022 में मार्च अप्रैल के महीने में, लोग जो है पाकिस्तान में ये कहते यार जान छोड़ो इससे, पता नहीं बेड़ा गर्क कर दिया है, और जब उतार
सारी दुनिया पीछे उसके लगी है, यानी उसके नाम से दिन शुरू होता है, उसके नाम से
अभी कोई न्यूज़ नहीं चलती।
सोचो कि 50 चैनल्स में फ्लिप करती हूँ ओवर द वीकेंड, हर जगह पे इमरान खान अदालत से बाहर आ गया है, आज अदालत से बाहर नहीं आया, आज उसके जो है वो
लॉयर
से बात हुई, आज लॉयर से बात नहीं हुई, आज अलीमा खान उधर बहन मिलने गई, आज बहन को नहीं मिल,
यानी कि काम ही नहीं है।
50 चैनल्स कोई ना कोई उसका मुद्दा लेके, और वो और कुछ नहीं तो ख्वाजा आसिफ ने गालियां आज दी थी उसको। सारे चैनल्स अपनी रोटी पका रहे हैं इमरान खान के ऊपर।
आज आप कह रही हैं कि आपने कहा आज रिजल्ट जो आया नैनो के रिजल्ट आए, उस पर कहते हैं जो ट्रूडो साहब जो है वो हाईएस्ट
पर हाईएस्ट, उसका फिर
रिजाइन वापस ले लें,
अब कुछ नहीं हो सकता, दूसरा
भी सूट चल गया ना। अच्छा, उसने तो आज लंच वंच सब कुछ कर लिया मेरे खाते, वो तस्वीरें कल भी चल रही थी, आज चल रही थी सुबह से कि वो,
लेकिन वो लेकिन द प्रोसीजर इज, वो पाकिस्तान की तरह का अन्ना कानून नहीं है ना। प्रोसीजर ये होता है कि अभी भी क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, आज आखिरी दिन था ना प्राइम मिनिस्टर का, ट्रूडो का,
कल वो अपना हाथ लेंगे।
हाँ नहीं, वो कल सुबह पहले गवर्नर जनरल के पास जाएंगे और उनको बोले एक
भाई ये चला गया, मैं आ गया
हूँ, मैं चला गया हूँ, तो ये जो दूसरे आ रहे हैं आप अब इनको प्राइम मिनिस्टर मानते
हुए जिम्मेदारी नहीं है,
आप इनको ओथ दो है ना। तो वो उसके अगर ट्रूडो साहब नहीं कहेंगे तो वो बैठे रहेंगे सूट सिलवा के,
ना करें नहीं, अब तो
नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर
एंड टाइम पे मूड चेंज हो जाए,
एंड मूड चेंज हो जाए ना, तो वो प्रोसीजर ना अगर फॉलो करना चाहे, जिस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर का जो है वो कंसेंट नहीं जाएगा गवर्नर जनरल के पास, उस वक्त तक चीजें आगे नहीं जाएंगी। सो दिस इज द प्रोसीजर।
तो वो कल ये होने लगा,
हाँ, ये कल होने लगा, हाँ जी
होपफुली हो जाएगा। लेकिन ये कितना 2-2.5 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कितना 2 महीने भी नहीं होगा,
हो सकता है महीने के बाद वो इलेक्शन,
महीने भी नहीं होगा, मुझे ऐसा हालात जो लग रहे हैं,
जैसे रमजान खत्म होगा इलेक्शन शुरू हो जाएंगे।
बस ठीक है जी, आप रमजान के बाद इलेक्शन, रमजान से पहले आपने ऑन्टेरियो के इलेक्शन दिए,
हाँ
अब रमजान के बाद आप फेडरल के थे,
बिल्कुल बिल्कुल
बिजी रखें,
हाँ बिजी
बिजी रखें,
बिजी रखें,
खबरें खबरें,
हाँ कोई ना उनको ना भूख ना प्यास ना जो है वो ज्यादा किराए हो गए हैं, ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, उन मसलों से निकाल ही दो उनको, है
निकाल
दी, बस इलेक्शनों में फंसाए रखो उनको।
चले जी,
कि अब कौन आ रहा है कौन नहीं,
खबरें सुनाएं जनाब, बिल्कुल।
ओके जी, प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय हमारे राजा बादशाह। राजा बादशाह जी आपको पता ही है, आमिर के दोस्त हैं, आमिर का जाके आपने नाम लेना है, 14 بلکہ اس سے بھی زیادہ 1775 آپ کے پیسے بچائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور آپ نے بالکل زیشان کا نام نہیں لینا کیونکہ اس کے انہوں نے صرف 100 روپے بچائے تھے, تو نہ میرا نام لینا ہے, میرے 400 بچائے تھے. صحیح ہے, تو عامر کا نام آپ کو لیں گے تو آپ کو ہوم اور آٹو انشورنس بہت ہی زبردست دیں گے, آل اسٹیٹ کے ساتھ ہے. اور ہمارے جو سلطان بھائی ہیں برامٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت زبردست بنڈل ڈیلز دیتے ہیں اپنے جو اپلائنسز ہیں ان کی. تو اگر آپ کا نیا گھر لے رہے آپ یا کہ آپ کو پرانا اپنا سارا سامان پھینکنا ہے باہر, تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اینڈ کوئک ٹرک لوپ کیو ٹی ایل ہمارے ہوتے ہیں وہاں پہ, گرجندر جی آپ ان سے بات کرو. بہت زبردست نیپنی کی جو لوکیشن ہے اس میں سروسز ہیں, یعنی باقی لوکیشنز پہ بھی ہیں. نیپنی کا یہ فائدہ کہ ایک طرف سے آپ انٹر ہوئیں گے, اپنا آئل شال چینج کرائیں گے, دوسرے سائڈ سے آپ نکل جائیں گے, تو بڑی زبردست کوئک سروس ہے. اور نہ پھٹنے والے کپڑے, سپیئر اینڈ مکے پہ جائیں آپ, ان کا نیا جو شو روم کھلا ہے برٹانیا روڈ کے اوپر, وہاں پہ آپ کو بہت زبردست اٹالین وول کے کپڑے ملتے ہیں. اینڈ ویلج ڈیز زبردست کھانے ہیں جی, اوتھینٹک, وہاں پہ ان کے پاس شیفس ہیں. دو لوکیشنز ہیں, آپ مسز ساگا اینڈ اوکویل, کہیں پہ بھی جا کے آپ انجوائے کا مزہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہمارے ناصر شاہ صاحب اوپن مائک کیفے, اس پہ آپ جاؤ, اس پہ بھی بہت زبردست چیزیں ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے کھانے چکر چھولے ٹائپ بہت ڈفرنٹ قسم کی ڈشز ہیں, آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, کینیڈین ڈیلیگیشن جو ہے آج وہ پہنچی ہوئی ہے امریکہ میں, وہاں پہ ڈی سی کے اندر آج جو ہے وہ بات چیت کریں گے تاکہ ٹیمپریچر کچھ نیچے آ سکے. اب پتہ نہیں ہے, کینیڈا نے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ ٹیرفز لگا دیا ہے, پورا پیکج دیا انہوں نے کہ ہم یو ایس گڈس کے اوپر لگائیں گے جو ایکسپینڈ ہوگا ٹو 155 بلین ڈالرز بائی منتھ اینڈ. اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں ہٹ ہوئیں گی اس میں اسمارٹ فونز, کنزیومر الیکٹرانکس, ویڈیو گیمز, کنسولز, آڈیو اکوپمنٹ بھی سارا شامل ہوئے گا. کنزرویٹو جو ہیں انہوں نے بھی آج گرین لائٹ ان کو دی ہے, لبرل پارٹی کو, کہ آپ پائپ لائن پروجیکٹس جو ہیں جس میں کہ کینیڈین اسٹیل ہوتا ہے اس کو آپ گرین لائٹ دیں. این ڈی پی نے بھی کہا کہ جتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہیں جس کے اندر کینیڈین اسٹیل یوز ہو رہا ہے اس کو آپ زیادہ اب فیور شو کریں. انڈسٹری منسٹر فلپ چیمپئن جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو آلریڈی جو ہے گو ہیڈ دے دیا ہے کہ تمام کے تمام پروجیکٹس جس میں پری ڈومینٹلی کینیڈین اسٹیل اینڈ الومینیم یوز ہوئے گا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج ڈی سی میں جو سب لوگ پہنچے ہوئے ہیں جن کی ملاقاتیں کامرس سیکرٹری ہاورڈ لٹنک کے ساتھ ہو رہی ہے, اس میں ہیں ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں ڈومینک لیبلون, اور ہمارے جو اونٹیریو کے پریمیئر ہیں ڈگ فورڈ, وہ ہیں وہاں پہ. یہ ڈگ فورڈ صاحب کا تھرڈ ٹرپ ہے, اور لیجر پول جو آج آیا ہے اس میں لوگوں کا بہت زیادہ کیونکہ وری ہے کہ وہ اپنا جابز لوز کر سکتے ہیں, تو اسی لیے یہ لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. جو ہماری میلانی جولی صاحبہ ہیں وہ وہاں پہ نہیں ہیں, اور کل وہ پریس کانفرنس میں تھی کیونکہ آج سے G7 شروع ہو گیا ہے اس کا سمٹ, تو وہ وہاں پہ ہے. تو جناب یہ ہیں جو ابھی جو فورڈ صاحب کا جو میسج بھی ابھی ہم دیکھ رہے تھے ان کا جو آیا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ملاقات پھر سے ہاورڈ لٹنے کے ساتھ ہوئی اور کافی وہ کنسٹرکٹیو ہے, لیکن انہوں نے کہا جی وہ میں نے بتایا ان کو کہ بھئی دونوں طرف کے لوگ جو ہیں سفر کریں گے تو آپس میں دیکھیں. فارن افیئرز منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم فوکس رہیں گے اپنے کینیڈینز کے ساتھ کام کرنے کے لیے اور ایڈریس کریں گے گلوبل چیلنجز کو. آج وہ اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقاتیں کر رہی ہیں کیوبیک کے اندر, یو ایس, ای یو, جاپان, یہ سب کے جو ہیں وہ فارن منسٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. G7 فارن منسٹرز کے ساتھ یہ میٹنگ چل رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں جی کہ کام تو بڑا مشکل ہے اور لیکن ہم کو پھر بھی جو ہے آگے چلتے جانا ہے. کلوز ڈورز میں کچھ جو ٹاکس ہیں وہ بھی یو ایس ٹیرفز کے اوپر ہو سکتی ہے, اور جو کچھ ٹرمپ صاحب کا رویہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں انیکس کر دوں گا کینیڈا کو یا اس کو اپنا 51st اسٹیٹ بناؤں گا, اس کے اوپر بھی بات چیت رہے گی. ان کی آج جو ملاقات ہوئی ہے میلانی جولی کی وہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ انڈیویجلی بھی علیحدہ سے بھی ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ یہ سارے جو ہیں مل کے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, فرانس, یو کے, جرمنی, اٹلی, جاپان, ای یو, یہاں پہ شارل وائے جو یہ ریجن ہے وہاں پہ کیوبیک کا, وہاں پہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے جو ہے جولی صاحبہ نے کہا کہ ظاہر ہے کہ آف کورس آپ کو پتا یہ G7 جو ہے 50-year-old اب آرگنائزیشن ہے, اس کی بات کریں گے جو ہاٹ اسپاٹس ہیں جیسے کہ یوکرین اور انڈو پیسیفک. اور انہوں نے کہا جی کہ G7 جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے یوکرین کی سوورینٹی, اور کینیڈا کا بھی انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو فارن انٹرفیئرنس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. جیو پولیٹیکل کلائمیٹ کیسے چینج ہو رہا ہے جب سے ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس میں آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ये जो प्रपोजल दिया है यूएस ने यूक्रेन के लिए, ये बड़ा ही वेलकम है और हमें लगता है कि वॉर रुक सकती है और जो पीस के लिए कनाडा तो हमेशा ही उसका चैंपियन रहा है। और उन्होंने कहा कि अगर ये सीज फायर हो जाए, प्रिजनर एक्सचेंज आ जाए, सिविलियन डिटेनीज वापस आ जाए और खासतौर पर यूक्रेन के जो किड्स है तो इसमें बड़ी अच्छी बात है। इसमें जो जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एनालीना बर्बॉक, उन्होंने कहा जी कि हम सबको जरा थोड़ा सा काम रखने की जरूरत है। आपको पता ही है कि जो कनाडा है उसके पास रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है इस साल G7 की और जो नेशनल लीडर्स की समिट है वो जून में अल्बर्टा में होगी। तो मीटिंग में बैठे हुए सब लोग, देखेंगे अभी क्या होएगा। ट्रूडो साहब जो है जी वो अब जो है उन्होंने आज अपना बिल्कुल लास्ट जो मैसेज दिया है उसमें उन्होंने उसका कैप्शन जो है वो डाला है। उन्होंने कहा जी कि आई एम सो प्राउड ऑफ कैनेडियंस एंड मुझे बड़ा मैं प्राउड फील करता हूं कि मैंने इन लोगों को और इस कंट्री को जो है वो सर्व किया है एंड वो लोग हैं जो कि दे राइज टू एवरी ओकेजन और बहुत ही हर किसी के साथ हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। वो कहते हैं जी मैं बहुत बोल्डली और अनअपोलोजेटिकली बोलता हूं कि मैं कैनेडियन हूं और कल जो है वो ट्रांजिशन का पीरियड होएगा। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी कि ट्रूडो साहब जो हैं वो अपना टर्म पूरा करते हुए मार्क कार्नी जो है उनको अब फॉर्मली हैंड ओवर करेंगे, लेकिन उससे पहले वो मुलाकात करेंगे गवर्नर जनरल मैरी साइमंस के साथ प्राइवेटली और उनका अपना रेजिग्नेशन देंगे और रिकमेंड करेंगे कि वो माइक कार्नी को बोलें कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें और अपना कैबिनेट बनाएं। कार्नी साहब जो हैं वो कनाडा के 24th प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्वेयर इन उसके लिए वो करेंगे और उनकी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि वो ट्रूडो साहब की इस वक्त बहुत बड़ी कैबिनेट है, आपको पता है 36 उसमें मिनिस्टर्स हैं, तो लग रहा है कि जैसे कार्नी साहब अपनी जो कैबिनेट है वो छोटी रखेंगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियोज जाने वाले हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने आज बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जी वो जो टैरिफ्स जो चाइनीज ईवीज के ऊपर उन्होंने लगाए हैं और स्टील और एल्युमिनियम पे लगाए हैं उसके ऊपर हम बिल्कुल ये रखेंगे डिस्पाइट बीजिंग रिटेलिएशन। ट्रंप साहब का डिसीजन जो था उसको चाहे वो वॉर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो ऐसा करेंगे। ये जो है दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट बाय फिलिप शैम्पेन जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा जी कि हम चाइना के ऊपर की जो ईवीज हैं उनके ऊपर हम रखेंगे ये टैरिफ्स। ऑटावा ने इम्पोज किया था 100% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन चाइनीज ईवीज, 25% इम्पोर्ट टैरिफ ऑन चाइनीज स्टील एंड एल्युमिनियम लास्ट अक्टूबर में, और बीजिंग जो है उसने फिर रिटेलिएटरी लगाए थे इनके ऊपर $4 बिलियन के टैरिफ्स इनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भी इंक्लूडिंग कैनोला ऑयल एंड पोर्क। शैम्पेन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हमको अपना इंडस्ट्री, अपने वर्कर्स और अपने कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और इन्होंने फॉलो किया था बाइडन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने कि ये किया था, और उन्होंने एक्यूज भी किया था कनाडा में ने कि बीजिंग जो है ये डिस्टॉर्ट कर रहा है ग्लोबल मार्केट को बाय एक्सपोर्टिंग ईवीज एट अनफेयरली लो प्राइसेस। इसके ऊपर जो आज हालांकि ये सब कुछ जो है बड़ी चीजें खुश कर सकती थी अमेरिका को, लेकिन फिर भी जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने बस सिर्फ तारीफ की यूके और मेक्सिको की और उन्होंने कहा जी कि ये जो टिट फॉर टैट जवाब आप यूएस को देते हैं इससे जो है ट्रंप साहब जो है बहुत अनहैप्पी हो जाते हैं और फिर वो अनहैप्पी रिस्पॉन्स देते हैं और जो है उनके साथ कामली चलना चाहिए, और इसीलिए कनाडा को उन्होंने आज बहुत बैश किया। आपको पता ही है कि अभी जब ईयू ने भी कहा था कि हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे तो ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं 200% टैरिफ्स लगाऊंगा यूरोपियन अल्कोहल प्रोडक्ट्स पे और अगर आप यूएस स्टील एल्युमिनियम के ऊपर ड्यूटीज लगाएंगे। तो ये जनाब चीजें जो हैं वो चल रही हैं। कनाडा के अंदर जनाब मीजल्स जो है बहुत तेजी से फैल रहा है इस साल में, ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ द केसेस है वो ऑन्टेरियो के अंदर है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक हेल्थ ऑन्टेरियो 227 कंफर्म्ड केसेस है, 69 प्रोबेबल केसेस जो है वो ऑन्टेरियो में आए थे एज ऑफ March 12 विच वॉज यस्टरडे, 11 केसेस जो है वो एसोसिएटेड है विद ऑन गोइंग मल्टी जुडिशियल आउटब्रेक, 4 जो है उसका ट्रेवल का हिस्ट्री था क्योंकि वो लोग बाहर से लेकर आए हैं, 1 जो है वो लिंक्ड है किसी विजिटर से जो कि विजिटर आया था उसने इनको दिया है, 3 जो थे उनको फिर हॉस्पिटलाइजेशन देने पड़े थे और ये ज्यादातर जो थे अनह्यूमनाइज थे, और 195 केसेस जो हैं वो अभी तक फरवरी के एंड से सामने आ चुके हैं। ये एक बहुत ही मैसिव इंक्रीज है कंपेयर टू जस्ट अबाउट 146 केसेस इन ऑल ऑफ कनाडा इन 2024 एंड 12 इन 2023। तो ये केसेस बढ़ गए हैं। यूएस के जो मिडिल ईस्टर्न बॉय हैं जी स्टीव मेटकॉफ, वो अब ट्रोनो के अंदर हैं और वहां पे ये एफर्ट्स जो की जा रही हैं कि भाई ये जो वॉर है यूक्रेन के अंदर इसको रोका जाए, तो उसके ऊपर जो है ये बातचीत हो रही है कि यूक्रेन में वॉर कैसे रोकी जा सकती है, जिसके के बारे में जो है पुतिन साहब ने भी कहा है कि वो एग्री करते हैं ये जो सारा इन्होंने जो प्रपोजल बनाया है ट्रंप साहब ने। विटकॉफ साहब जो हैं वो अब रशिया में बात कर रहे हैं ऑफकोर्स कि उनकी पुतिन साहब के साथ भी मुलाकात होगी कि ये जो 3 ईयर यूक्रेन वॉर है इसको कम किया जाए। ट्रंप साहब ने व्हाइट हाउस में कहा कि रशिया जो है वो मुझे लगता है कि वो एग्री कर जाएंगे 30 डे सीज फायर के लिए, और जैसे कि कल भी सबने कहा था मार्को रूबियो ने भी कि जी द कोर्ट इज इन रशियाज कोर्ट, तो वही वो बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये ब्लड बैथ जो है ट्रंप साहब ने कहा इसको रुकना चाहिए। पुतिन साहब ने कहा कि एग्री तो वो करते हैं प्रपोजल्स के साथ सीज फायर के लिए, लेकिन आपको इसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा, यानी कि उन्होंने ब्लेम किया यूक्रेन को कि भाई इसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई है, हमने नहीं की, और उन्होंने कहा जी कि कुछ डिटेल्स जो है वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। आज वो रिपोर्टर्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे पहले उनकी मुलाकातें जो थी वो हुई थी बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो उधर आए हुए हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये लॉन्ग टर्म पीस तो आना ही चाहिए, और ये जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त रशियन फोर्सेस अभी भी एडवांस कर रही हैं यूक्रेन के अंदर, और जो अराउंड 1/5 ऑफ यूक्रेन टेरिटोरी है उसके ऊपर ये कब्जा करे बैठे हैं। पुतिन साहब ने बहुत थैंक यू आज किया ट्रंप साहब को, उन्होंने कहा कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस वॉर को एंड करने के लिए। आज पुतिन साहब जो है ग्रीन कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म पहन के जो क्रिस्क का एरिया है वहां पे एक जो पोस्ट कमांड है कमांड पोस्ट है उसके ऊपर गए हुए थे इन वेस्टर्न रशिया, और क्योंकि वो उन्होंने कहा जी कि यूक्रेन अपना जो है फुट होल्ड यहां पे लूज करता जा रहा है और रशियन फोर्सेस जो हैं वो आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक तरफ तो उन्होंने तारीफ की ट्रंप साहब की और दूसरी तरफ उनके जो फोर्सेस हैं वो आगे जा रहे हैं। ट्रंप साहब की आज मुलाकातें जो थी ओवल ऑफिस के अंदर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जो है मार्क रुटे के साथ थी, वहां पे वो एक एड्रेस कर रहे थे, तो वहां पे एक जर्नलिस्ट ने उनको क्वेश्चन पूछ लिया कि नहीं जीशान जो मार्क रुटे के साथ उनकी तस्वीर है जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं वहां पे जो है यस दैट्स राइट, तो उधर वो आप देख सकते हैं कि वहां पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी बैठे हुए थे और पीट हेक्सेथ जो है उनके मिनिस्टर वो भी सेक्रेटरी जो डिफेंस है वो भी बैठे हुए थे, तो वहां पे एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने कहा जी कि आप जो है ये ग्रीनलैंड को क्या एनेक्स करना चाहते हैं, तो ट्रंप साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि बिल्कुल इट विल हैपन, और मैं सोचता हूं कि अभी तक मैंने पूरी तरह इसके बारे में सोचा नहीं है लेकिन मैं सोचूंगा, और ये जो आदमी नेक्स्ट टू मी बैठा हुआ है यानी कि रुटे साहब की तरफ इशारा किया कि ये जो बैठे हुए हैं तो ये ही कैन बी इंस्ट्रूमेंटल, तो जब जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा रुटे साहब से कि आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं नहीं इस डिस्कशन से मुझे बिल्कुल बाहर रखो, मैं नेटो को बिल्कुल ड्रैग नहीं करना चाहता हूं इस डिस्कशन में, हमारी प्रायोरिटी जो नेटो की है वो सिक्योरिटी इन द रीजन है और उसी के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आपको पता ही है कि ट्रंप साहब ने कहा था कि वो ही इज नॉट रूलिंग आउट मिलिटरी फोर्स, अगर उनको वो भी यूज करके डेनमार्क से ये लेना पड़े तो वो लेंगे। कनाडा के जो एम्बेसडर हैं स्टीफन डियोन, उन्होंने कहा जी कि ये थ्रेट्स जो हैं नॉर्मल नहीं हैं, ये वायलेट करते हैं यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, मेयरली थ्रेटनिंग जो है अगर किसी सॉवरेन कंट्री को ये भी वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और ट्रंप साहब जो हैं वो इसके अलावा कहते रहते हैं कि जी कनाडा को भी मैं अपना 51st स्टेट बनाऊंगा, और वो कहते हैं कि जी कनाडा बहुत अच्छे से काम करेगा, इट्स गोइंग टू बी ग्रेट एंड चेरिश्ड स्टेट, और जो है वो इस पे बात करेंगे। इसके ऊपर आज मार्क कार्नी साहब ने भी कहा है कि मैं ट्रंप साहब के साथ सिर्फ उस वक्त मिलूंगा अगर वो कनाडा की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो फिर हम जो है एक कॉमन अप्रोच जो है ट्रेड पे ले लेंगे। तो ये जनाब बातें जो हैं ये चल रही हैं। कतर जो है जी उसने अब गैस नेचुरल गैस जो है वो प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है सीरिया को। आपको मालूम ही है कि वो काफी दिनों से इनकी मुलाकातें जो हैं रीजन के अंदर चल रही थी, और अभी रिसेंटली भी जो कतर के जो किंग हैं उनके साथ मुलाकातें हुई थी सीरिया के जो इंटरिम लीडर हैं, तो वो कहते हैं जी कि ये गैस सारी दी जाएगी थ्रू जॉर्डन, टू टैकल द इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज. ये जो इन्होंने कतर ने ये बात की है, ये कि उन्होंने डील साइन की है जॉर्डन के साथ जो कीवी है इन कोलेबोरेशन विद यूएनडीपी, वो कहते हैं उसी से हम आपको भी एक्सटेंड करेंगे. तो तकरीबन ये जो नेचुरल गैस सप्लाई किया जाएगा 400 मेगावाट इनको डेली दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है इसकी प्रोडक्शन को हौले हौले बढ़ाएंगे दीर अली पावर प्लांट के लिए सीरिया के अंदर. तो जो सिटीज को पावर मिलेगा वो है डमास्कस, रीफ डिमस्क, अज सुवेदा, दारा, अल कुनेत्रा, होमस, हमा, तारतूस, लताकिया, एलेपो और दीर अल जोर. ये जो सीरिया के इंटरिम अथॉरिटीज हैं, ये बड़ा बहुत दिनों से ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि जब से बिशार अल असद की गवर्नमेंट गई है ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी सफर कर रहा है. वैसे भी इसने किया था 13 ईयर की सिविल वॉर के अंदर. इससे पहले आप सोचते होंगे कि क्या सीरिया अंधेरे में था? नहीं, अंधेरे में नहीं था. डमास्कस जो है वो ऑयल लेता था अपने पावर जनरेटर्स के लिए, जनरेशन के लिए ईरान से, लेकिन जब से बशार अल असद का गवर्नमेंट गया है तो ईरान ने जो है इनको ऑयल देना छोड़ दिया है. अर्जेंटीना के अंदर जी आज काफी मारामारी हुई, 15 लोग जो है इंजर्ड रहे और हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जो है अरेस्ट किया गया यहां पे, जब लड़ाई ये जो फुटबॉल फैंस और रिटायरीज ने जो पुलिस के साथ क्लैश किया इनके जो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स के अंदर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट जेवियर मिलाई है उसका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और खासतौर पे जो उसने कहा है कि मैं पेंशन्स को कट कर दूंगा, उसके ऊपर लोगों का बड़ा जो था वो जोर था, लोगों का गुस्सा था. आज राइट पुलिस जो है उसने इनके ऊपर टीयर गैस और मारी और रबर बुलेट्स मारे और वाटर कैनन भी दिया, क्योंकि जो प्रोटेस्टर्स है वो पत्थर इनके ऊपर फेंक रहे थे. बहुत सारे जो इंजर्ड थे उनको फिर हॉस्पिटल में लेके गए. रिटायरीज बेसिकली जो थे वो बहुत ज्यादा जो है परेशान है, क्योंकि उनका पेंशन काटा जा रहा है और वो कह रहे हैं जी कि ये जब से 2023 में मिलाई साहब आए हैं तो हमारे ये सारे पेंशन ड्राई अप होते जा रहे हैं. ये जिस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो साथ ही वो जो फुटबॉल फैंस थे डिफरेंट क्लब्स के, उन्होंने भी आके इनको ज्वाइन किया, और ये उस वक्त इन्होंने ज्वाइन किया और ये चीजें उस वक्त ज्यादा खराब हुई जिस वक्त देखा गया कि एक एल्डरली आदमी जिसने कि फुटबॉल जर्सी पहना हुआ है उसको पुलिस ने पकड़ के काफी मारा. तो ये सब लोग वहां पे खड़े हुए चैंट कर रहे थे मिलाई यू आर गार्बेज, यू आर डिक्टेटर, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे अर्जेंटीना का जो 1976 से 83 तक मिलिट्री रूल था, वो कह रहे थे कि वो तुमसे बेटर था. नाइनेंटिक जो है वो जनाब अब सेल कर रहा है पोकेमॉन गो, पिकमिन ब्लूम, मॉन्स्टर हंटर नाउ एट द ट्यून ऑफ 3.85 बिलियन US डॉलर का डील जो उन्होंने किया है स्कॉपिली से, जो कि होली ओन सब्सिडरी है ऑफ सऊदी कंपनी सेवी गेम्स, जिसको के ओन करते हैं सऊदी गवर्नमेंट का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड. पोकेमॉन गो जो है उसके 100 मिलियन प्लेयर्स है और दो अदर एप्स भी इनको मिलेंगे एज पार्ट ऑफ द डील विच इज कैंप फायर एंड वे फेयरर. तो अब ऑयल से निकल के जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान का विजन है कि हमको आगे भी जाना है, चीजों दूसरों में इन्वेस्ट करना है, तो अब ये गेमिंग सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है जी शहबाज शरीफ साहब, उसने बोला है कि पाकिस्तान जिस वक्त तक उसमें जो टेररिज्म खत्म नहीं होगा ये आगे मूव नहीं कर सकेगा, प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा, खासतौर पे इन बलूचिस्तान एंड केपी. एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग ऑन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन क्वेटा जो थे ये उससे एड्रेस कर रहे थे. उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का बहुत शुक्रिया अदा किया और सिक्योरिटी फोर्सेज का भी फॉर सक्सेसफुली रिकवरिंग जो जाफर एक्सप्रेस के जितना भी पैसेंजर्स थे उनको, और उन्होंने कहा जी के टेररिस्ट जो हैं उनको होली मंथ ऑफ रमदान का भी कुछ शर्म नहीं आया और उन्होंने ये अटैक किया लोगों पे. उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इस तरह का दूसरा जो इंसिडेंट है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये जो मलिशियस प्रोपोगंडा सोल्जर्स और मार्टर्स के खिलाफ कर रहे हैं जो भी लोग, वो टॉलरेट नहीं होएगा. और आज क्वेटा में लोगों के साथ वो थे एंड ही वांटेड टू शो सॉलिडारिटी टू देम. भाईजान सॉलिडारिटी ना दिखाओ, तुम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है ना वो सही करो. फेडरल गवर्नमेंट ने आज कहा है कि वो रिड्यूस करेगा बाय बैक रेट ऑफ सोलर रूफ टॉप कंज्यूमर्स टू 10 रुपीज पर यूनिट फ्रॉम 27 रुपीज पर यूनिट टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन ग्रिड कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंस डिवीजन. इससे पहले जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी वो मिली थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब, और उन्होंने ये बहुत सारा अमेंडमेंट्स जो था अप्रूव किया था टू एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग रेगुलेशंस टू रिड्यूस ग्रोइंग फाइनेंशियल बर्डन। डिसीजन जो था ये उस वक्त आया जिस वक्त इनको बताया गया कि ये जो सोलर पैनल्स का जो है वो यूज वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है, नेट मीटरिंग कंज्यूमर्स जो हैं बढ़ गए हैं, तो इसलिए इनको कम करने की जरूरत है क्योंकि इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ज्यादा है, क्योंकि जाहिर है कि ये एक्सपेंसिव है, इसके ऊपर पैसे बहुत लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा ऐसे उनका फाइनेंशियल बर्डन खत्म करने का जरूरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि सोलर पैनल पे ये क्यों जो है वो टैक्स लगा रहे हैं, उसमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है, गवर्नमेंट का तो कुछ जा ही नहीं रहा, लोग अपने सोलर पैनल लगा रहे हैं और जो धूप है उससे उनको वो मिलेगा और जो उनके वो जो लगे होते हैं जो इन्वर्टर्स वगैरह जो है वो तो आके सोलर कंपनी करेगी, तो गवर्नमेंट का उसमें क्या लेना है समझ नहीं है। फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जी आज फिर एक टेररिस्ट अटैक जो था उसमें 10 मिलिटेंट्स को मारा केपी के साउथ वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट में, जब वहां पे एक सुइसाइड ब्लास्ट हुआ नियर एफसी कैंप इन जंदोला एरिया के अंदर। सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक जो टेररिस्ट थे उन्होंने जंदोला चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया था, सिक्योरिटी फोर्सेज ने फिर उस हमले को रिपल्स किया और सुइसाइड बॉम्बर जो था उसने गाड़ी के अंदर एफसी के कैंप के पास अपने आप को ब्लो किया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने जो है बहुत आज तारीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की, उन्होंने कहा जी के नेशन आपके साथ खड़ी है इन योर एफर्ट टू एलिमिनेट टेररिज्म, और जो केपी का जो इलाका है आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा यहां पे भी टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, फॉलोड बाय बलूचिस्तान। केपी के अंदर जो मिलिटरी अटैक्स अभी तक हुए हैं वो 27 अटैक्स हुए हैं, फाटा में 19 हुए हैं और इसमें 46 लोगों के जो है वो डेथ्स हुए हैं। पीटीआई के अंदर जनाब लड़ाइयां शुरू हो गए हैं और तैमूर सलीम खान झगड़ा और फॉर्मर जो केपी के मिनिस्टर थे उनके और शेर अफसर मरवत जो है उनके बीच में काफी लड़ाई शुरू हो गया है, क्योंकि झगड़ा साहब ने एक डेफेमेशन नोटिस जो है वो भेजा है मरवत साहब को, सीकिंग 1 बिलियन रूपीज इन डैमेजेस ओवर फॉल्स एलिगेशन। मरवत साहब जो है वो आपको पता ही है ना, वो भी मैवरिक है, तो उसने क्लेम किया था 2 टीवी के शोज में कि इन्होंने बहुत सारा फाइनेंशियल मिसकंडक्ट किया है, और अभी रिसेंटली मार्च 11th को इन्होंने कहा जी कि इन्होंने 36 बिलियन रुपीस पेंशन फंड के खाए हैं और उससे बहुत ही वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज जो है वो खरीदे हैं हयाताबाद और इस्लामाबाद में। झगड़ा साहब के जो लीगल काउंसिल है एडवोकेट अली गौर दुरानी, उसने कहा ये सारे के सारे मेलिशियस एलिगेशन है, बेसलेस है और ये उनका सोशल और प्रोफेशनल रेप्यूटेशन को डैमेज करने के लिए है और ये वायलेट करता है पाकिस्तान डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 क्योंकि इनके पास कुछ भी प्रूफ्स नहीं है। उन्होंने कहा जी कि आप पब्लिकली जिस तरह आपने एलिगेशंस लगाए हैं वैसे ही टीवी के ऊपर आके आप अपोलोजाइज करेंगे तो ही ये 14 डेज के अंदर तो ही ये केस जाएगा, अदरवाइज आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो चलाया जाएगा। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने कहा जी कि हमारे पास बिल्कुल एविडेंस है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग इंसिडेंट हुआ था इसके अंदर जो है अफगानिस्तान से हमने लोगों को ट्रेस किया है, यानी कि जो उसका जो लिंक है वो अफगानिस्तान के लोगों से मिलता है। और उन्होंने कहा जी कि हाँ बिल्कुल इंडिया तो ट्राई कर ही रहा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का, लेकिन अब अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। आपको पता ही है कि ये जो क्वेटा से पिशावर ट्रेन जो जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, उसको बीएलए के टेररिस्टों ने इसके ऊपर अटैक किया था, जो कि ज्यादातर अलेजली कहा जाता है कि इंडिया में जाके ट्रेनिंग्स लेते हैं। फॉरन ऑफिस स्पोक्स पर्सन जो शफकत अली खान है उनसे फिर एक क्वेश्चन किया गया एक जर्नलिस्ट ने उस वक्त, उन्होंने कहा कि क्या बात है पाकिस्तान ने अपना स्टैंस चेंज कर लिया है इंडिया से अफगानिस्तान, क्योंकि अलेजली यही बोला जाता था कि बीएलए के जो टेररिस्ट है वो तो इंडिया में ही ट्रेन होते हैं और उसको वो अलेजली रॉ ही जो है वो फंडिंग भी उसका करता है, तो अब आप अफगानिस्तान बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर कर रहे हैं, तो इज देयर एनी पॉलिसी शिफ्ट। तो उसके ऊपर जो खान साहब है उसने बोला कि कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है और कुछ भी फैक्ट्स चेंज नहीं हुआ है, इंडिया बिल्कुल इन्वॉल्व है, ये जो स्पॉन्सर करती है टेररिज्म को इन साइड पाकिस्तान, लेकिन इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की मैं बात कर रहा था जिसके के अंदर जो सारे वो जो लिंक्स है वो अफगानिस्तान में जाके जुड़े हैं, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। ट्रंप साहब आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले जो उनकी मुलाकातें मोदी जी के साथ हुई थी, जब मोदी जी गए थे डीसी के अंदर तो उन्होंने बहुत उनको जोर दिया था कि आपको मोदी जी ये करना पड़ेगा, तो उसमें मोदी जी ने सब कुछ हां बोला था। अभी जो है वो और ज्यादा जोर जो है वो आ रहा है कि उसमें कहा जा रहा है इंडिया को कि भई आप और ज्यादा मिलिटरी इक्विपमेंट जो है आप इससे खरीदे, अमेरिका से खरीदे। आज इस मसले के ऊपर जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लटनिक जो है वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि इंडिया को जो है वो लेना चाहिए, हमसे जो है वो असला लेना चाहिए, खासतौर पे जो ट्रंप साहब ने कहा था कि F-35 लाइटनिंग स्टेल्थ फाइटर्स जो है वो आप हमसे लो। लटनिक साहब जो है वो कह रहे हैं, आज वो बात कर रहे थे और उन्होंने आज कहा कि ये जितने भी आपके डिफेंस के मसले हैं बजाय इसके कि आप फ्रांस और यूके से लेते हैं ये बिल्कुल सिली है, उनसे आपको बिल्कुल लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि जो अमरीका का इक्विपमेंट है वो दुनिया में टॉप क्लास है और आपको तो ये जो इन्होंने 36 फ्रेंच डसॉल्ट राफेल फाइटर्स भी 2016 में लिए थे उसमें भी उन्होंने कहा जी कि ये आपको लेने की क्या जरूरत थी, हमारे से लो क्योंकि हमारे पास तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो चीजें हैं। हालांकि हुआ ये था कि जिस वक्त दोनों ने बिड डाली थी, यूएस के एयर कंपनी ने और फ्रेंच कंपनी ने भी, तो जिस वक्त ये इन्होंने फाइट्स करवाए थे तो उसमें जो डिसॉल्व थी वो बिल्कुल ये जो राफेल तैयारे थे इन्होंने ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था यूएस के उससे। इन्होंने बहरहाल जी लटनिक साहब ने कहा कि यूएस जो है वो दुनिया की बेस्ट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चलाता है और उसका जो डिजाइन है वेपन्स का और बिल्डर जो है जिस तरह का वो है उसमें बिल्कुल उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इंडिया को उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इधर इधर से मत खरीदो, आप हमसे खरीदो, बल्कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया शुड डू इटसेल्फ अ फेवर और जो फ्यूचर डिफेंस नीड्स है वो एक्सक्लूसिवली वो अपनी यूएस से पूरा करे। आपको पता ही है कि जो इंडिया है वो अपना ज्यादातर मटेरियल डिफेंस का रशिया से खरीदता है, तो उन्होंने कहा जी आप रिड्यूस करो अपना डिपेंडेंस रशियन मटेरियल के ऊपर जो कि बनता है अराउंड 60-65% ऑफ ऑल द इक्विपमेंट जो इंडिया लेता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी बोला है कि रशिया इंडिया को 36% ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स उसका पूरा करता है, फ्रांस 33%, इसराइल 13% और 18% वो लोकली सोर्स करते हैं या कि दूसरे जो ओवरसीज सप्लायर्स हैं उनसे लेते हैं इंक्लूडिंग यूएस। और लेकिन फिर भी इंडिया ने काफी यूएस आर्ममेंट्स लिए थे वर्थ 22 बिलियन US डॉलर्स, तो मतलब ऐसा भी छोटा कुछ वो नहीं है कि कम खरीदे हैं, काफी खरीदे हैं। अच्छा जनाब, परसों हमने आपको बताया था कि एक रिलीजियस लीडर यहां पे पकड़ा गया है सेक्सुअल अब्यूज के लिए, ब्रैम्पटन के रेजिडेंट थे वो, अब आज ऑस्ट्रेलिया से ये जो है ये खबरें आ गई हैं। बालेश डांडकर जो वन ऑफ द फाउंडर्स हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया विंग ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन, इनको आज 40 ईयर्स जेल दिया गया है फॉर एलैबोरेटली एग्जीक्यूटेड मैनिपुलेटिव हाईली प्रेडेटरी रेप्स ऑफ 5 कोरियन विमेन इन ऑस्ट्रेलिया। इनको चार्ज किया गया है फॉर 39 ऑफेंसेस जो कि इन्होंने कमिट किए थे बिटवीन जनवरी से अक्टूबर 2018 में, अप्रैल 2023 में सिडनी की जो ज्यूरी थी उन्होंने इनको ऑल 39 ऑफेंसेस पे गिल्टी पाया था। ये क्या करते थे कि ये औरतों से मिलते थे, एक नॉन एग्जिस्टेंट जो कि जॉब थी वो जॉब के एड्स ये डालते थे और कोरियन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का उसमें बोलते थे और सिडनी के हिल्टन होटल बार में मिलते थे जिसके के पास ही इनका अपार्टमेंट भी है, उसके बाद वो इन औरतों को ड्रग करते थे और फिर इनको रेप करते थे उसी होटल में और फिर फिल्म करते थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब इनके अपार्टमेंट पे रेड डाला तो वहां पे इनको सारे के सारे वो रिकॉर्डिंग्स मिले। इन्होंने बोला कि जी मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं कि मैं ड्रग के लिए जो है वो मैं ड्रग करता था औरतों को या कि सेक्स जो थी वो नॉन कंसेंशुअल थी। उन्होंने कहा जी आपका जो कोर्ट को उसने कहा कि आपका जो जो वो है डेफिनेशन है कंसेंट का वो डिफरेंट है और मेरा जो है वो डिफरेंट है। बहरहाल पुलिस ने इसके घर से जो रेप ड्रग्स होते हैं वो भी फाइंड आउट किए और ये काफी मशहूर थे ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि इनका क्लोजनेस था बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ, तो खास तौर पे जो इनके बड़े वो तस्वीरें थे हाथ वाथ मिलाते थे और जिस वक्त बल्कि वो उधर ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो इन्होंने काफी उसमें बढ़ के काम भी किया था, तो हाईली रिगार्डेड थे इंडियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी में। तो फिर ये इन्होंने ये ग्रुप जो था उसमें भी शामिल हुए थे उसको सेटअप करने के लिए और स्पोक्स पर्सन थे फॉर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियंस। इन्होंने की रोल प्ले किया था जब मोदी जी का रिसेप्शन था सिडनी में 2014 में, मार्च में जिस वक्त इनके क्राइम के रिपोर्ट्स आने शुरू हुए थे तो ये जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा था कि जी इन्होंने जो ढांडकर साहब है इसने रिजाइन कर दिया था उसी वक्त। तो ये ऐसे जो है वो نہ چلا. عامر خان صاحب جو ہیں جی ان کا تو لگ رہا ہے نہ تو وہ ایج کر رہے ہیں نہ تو ان کا دل جو ہے وہ وہ ہو رہا ہے بوڑھا ہو رہا ہے, جوان جوان ہوتے جا رہے ہیں. ابھی انہوں نے تیسرا اپنا ریلیشن شپ کا کانفرمیشن دیا ہے ود گوری اسپریٹ, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اب ایک سال سے ساتھ ہیں. فرائیڈے کو جو عامر خان صاحب ہے 60 ایئرز کے ہو جائے گے, اور انہوں نے آج میڈیا کو ایک میٹ اینڈ گریٹ ایونٹ تھا اس میں ان کو انٹروڈیوس کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اچھا اوکیزن ہے ان سے آپ کو ملوانے کے لیے اور اب مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے پہلے کل جو شاہ رخ خان اور سلمان ان کے گھر پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی کہ میں ان سے بھی انہوں نے ملاقات ان کی کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی ویسے تو میں ان کو پچھلے 25 ایئرز سے جانتا تھا لیکن پھر ہمارا کنیکشن کچھ نہیں رہا تھا, اور ابھی 1.5 ایئرز بیک ہمارا کنیکشن ہوا ہے. ممبئی یہ آئے ہوئے تھے تو ایکسیڈنٹلی ہم مل گئے اور اب تب سے ہم ان ٹچ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے آرگینکلی ہوا ہے. آپ کو پتا ہی ہے کہ عامر خان جو ہے انہوں نے پہلا جو شادی کیا تھا وہ فلم پروڈیوسر رینا دتا سے کیا تھا. 1986 سے 2002 تک یہ میرج رہی تھی, اس میں ان کے دو بچے تھے جنید اور ارا. پھر 2005 میں انہوں نے شادی کیا تھا ڈائریکٹر کرن راؤ سے, لیکن سیپریٹڈ تھے ان سے 2021 کے بعد سے. لیکن پھر بھی اپنا جو ان کا بیٹا ہے آزاد اس کو یہ دونوں مل کے کو پیرنٹ کرتے ہیں. عالیہ بھٹ جو ہے جی وہ ویسے تو مارچ 15 کو 32 ایئرز کی ہوئے گی, لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے آج ایک اسپیشل ڈے جو منایا ہے اور اس میں بڑی ہی سویٹ قسم کے پری برتھ ڈے سیلیبریشن جو ہیں اپنے ہسبینڈ رنویر کپور کے ساتھ انہوں نے ممبئی میں کیے, اور بڑا کیوٹ سا انہوں نے پہلے کیک کاٹا, پھر وہ جو رنویر ہے انہوں نے وہ بڑی شرارت کرتے ہوئے کیک ان کے منہ پہ لگا دیا اور پھر وہ انہوں نے وائپ کیا. پھر یہ سارے لوگ جو میڈیا کے سامنے کر رہے تھے, میڈیا نے بہت سارے ان کے پکچرز لیے اور کچھ جو تھے انہوں نے کوشچنز بھی پوچھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا ڈاٹر جو ہے رہا اس کے بارے میں آپ اس کو کیوں نہیں زیادہ سامنے لاتے ہیں یا کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو پبلک اٹینشن سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی جو اپ کمنگ فلم ہے دونوں کی جس میں یہ دونوں نظر آئیں گے لو اینڈ وار جو کہ بنا رہے ہیں سنجے لیلا بھنسالی, اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی ہے. عامر خان جو ہے ان سے یہ جو میٹ اینڈ گریٹ چل رہا تھا اسی میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ جو ہے شاہ رخ خان اور سلمان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں تینوں کبھی کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کریں گے لیکن ہم وی آر ویٹنگ فار دا رائٹ اسکرپٹ, اور انہوں نے کہا جی کہ آڈینس بھی شاید یہ دیکھنا چاہتی ہے اور ہم اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. عامر اور سلمان جو ہے وہ آپ کو پتا ہی ہے بڑی ان کی زبردست قسم کی آئیکونک کامیڈی جو 1994 میں آئی تھی انداز اپنا اپنا اس میں تھے, لیکن کبھی بھی انہوں نے کام نہیں کیا ہے شاہ رخ خان کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اور شاہ رخ نے بہت سارے فلموں میں ساتھ کام کیا, جیسے کہ کرن ارجن, کچھ کچھ ہوتا ہے, ہم تمہارے ہیں, سنم, پٹھان, لیکن انہوں نے کبھی نہیں کیا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ ہاں ایک تو ہم انداز اپنا اپنا ٹو بنانا چاہتے ہیں اور راج جی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو وہ ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں ان کا کہ وہ اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر ایسا کوئی اچھا اسکرپٹ آئے گا تو اس کے میں ہم تینوں بھی کام کریں گے. فارمر آسٹریلین کرکٹ ٹیسٹ لیگ اسپنر اسٹوئرٹ میگل 54 ایئرز ان کی ایج ہے, ان کو آج جو ہے وہ گلٹی فائنڈ کیا سڈنی کورٹ نے فار ٹیکنگ پارٹ ان کوکین سپلائی. 6 گھنٹے یہ ہیئرنگ چلتا رہا اور جیوری نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ ناٹ گلٹی ہے فار ویری سیریس چارج جو کہ ہے کہ کمرشل اسکیل ڈرگ سپلائی میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنا جو پرسنل کوکین ڈیلر تھا اس کو ایک جو اپنا کوئی اسوسیٹ تھا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا تھا ان 2021, اور پھر ان دونوں نے آرگنائز کیا تھا 200,000 کا ڈرگ ڈیل. یہ اس سے ٹرانزیکشن میں انوالو نہیں تھے, لیکن جیوری نے کہا کہ تم گلٹی ہے کہ تم جانتے ہوئے کہ یہ سارا جو ہے پروہیبٹڈ ڈرگ کا سپلائی کر رہے ہیں, تم نے ایک اور آدمی کو بھی اس میں انٹروڈیوس کرایا. تو ان کو جو سینٹنس ہے اب مئی میں ہوئے گی. انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 44 ٹیسٹ کھیلے تھے بٹوین 1998 ٹو 2008. پاکستان کے سینئر جو پلیئر ہے ٹینس کے طلحہ وحید 47, انہوں نے جناب بہت زبردست ورلڈ ریکارڈ اب بنائے ہیں ان 1 منٹ جو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی ڈالے ہیں. انہوں نے جو ہے یہ امریکن جان پیری کا جو 2019 کا ریکارڈ تھا آف سرونگ 42 ان 1 منٹ وہ ختم کرتے ہوئے 59 سکسیسفل سروز انہوں نے کیے, اور اس کا بھی ریٹیفیکیشن جو ہے ابھی آیا ہے. پاکستان ٹینس فیڈریشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اسام الحق وہ بڑے خوش ہیں اس کے اوپر, انہوں نے کہا کہ یہ اگزیکٹلی ہمیں اس طرح کے اچیومنٹ چاہیے پاکستان میں ٹینس کو بڑھاوا دینے کے لیے. نیوزی لینڈ کی میں ٹیم جو پاکستان کی جا رہی تھی اس سے پل آؤٹ کر گئے تھے ان کے کوچ جو ہے محمد یوسف, اور انہوں نے پی سی بی کو بولا تھا کہ جی میری بیٹی کی طبیعت بہت बहुत खराब है, इसलिए जो है मैं नहीं जा रहा हूं। न्यूजीलैंड के अंदर आपको पता ही है पाकिस्तान खेलेगा 5 T20s और 3 ODIs, तो उसमें कोच का साथ, बैटिंग कोच का साथ जाना जरूरी था। वैसे भी अभी इनको न्यूली अपॉइंटेड थे ये, लेकिन फिर मिनट्स बिफोर जो है वो जब आवर्स बिफोर आप कह सकते हैं, जब वो जाने के लिए तैयार था स्क्वाड, तो इन्होंने पीसीबी को बोला कि नहीं मैं फ्लाई करूंगा क्योंकि अब मेरे बेटी की जो तबीयत है वो इम्प्रूव हो गई है। माइकल ब्रेसवेल जो है, जो कि आप कैप्टन करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन होम सॉयल अगेंस्ट पाकिस्तान, तो उसके अंदर उनको मुसीबत इसलिए रहेगी क्योंकि उनके सेवरल की प्लेयर्स जो है वो मिसिंग रहेंगे ये जो अभी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि वो सारे के सारे आईपीएल में चले गए हैं। इसके अंदर जो इनके टॉप प्लेयर्स थे स्किपर मिशेल सैंटनर, डेवॉन कॉनवॉय, लोकी फर्गसन, ग्लैन फिलिप्स और केन विलियमसन जो हैं, ये सारे आईपीएल के लिए गए हैं और ये मैचेस जो हैं अब संडे से शुरू हो रहे हैं क्राइस्ट चर्च में। एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट जनाब पीसीबीज ल्यूमिनारा ट्रॉफी, जो कि पीसीएल 10 के लिए बड़ी ग्लिटरिंग किस्म की जबरदस्त ट्रॉफी जो है ये इन्होंने आज अनवेल की। मैचेस जो हैं 11 अप्रैल से शुरू होंगे। ये 3 मिनट का एक वीडियो आया है जो कि शूट किया गया है कराची के कोस्टल वाटर्स में। यहां पे प्रोफेशनल डाइवर जिसके बारे में हमने आपको बताया था, वो कोलंबिया से आया है, उसने डाइव किया विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान नेवी और फिर ये नीचे से ढूंढ के लाए एक ट्रेजर चेस्ट, उसके अंदर ये ट्रॉफी था जो कि उन्होंने पीएसएल के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिया। पीएसएल के ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग चेयरमैन मोहसिन नकवी जो थे वहां पे थे, फ्रेंचाइज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, क्रिकेटर्स थे सरफराज अहमद एंड रोमन रईस, और नकवी साहब ने कहा कि पीएसएल कमिटेड है फॉर इनोवेशन एंड एक्सेलेंस। ये ट्रॉफी जो है वो शो करती है लीग का शाइनिंग लेगेसी एंड ब्राइट फ्यूचर। जो ये ट्रॉफी है इसको क्राफ्ट किया गया है सिंगल शीट ऑफ सॉलिड सिल्वर से और बहुत ही इंट्रिकेट किस्म की मशीन स्टोन सेटिंग है इन 10 kg 22,850 हाई लस्टर जिरकॉन स्टोन्स जो है वो भी इसमें लगाए गए हैं। और पीएसएल 11 के बारे में भी आज कुछ खबरें आई है कि इसके अंदर ज्यादा टीमें हो सकती है, तो अब देखेंगे जनाब कितनी बनाएंगे ये। कितनी है अभी, कितनी है, 5 है, 6 है, तो अभी 8 हो जाएंगी।
अच्छा, 8 हो जाएंगी,
हाँ 11 में पीएसएल 11 में 8 हो जाएंगी।
जबरदस्त, नाइस जी, जबरदस्त जनाब। और तमाम सामेन और नाजरीन को आई होप के खबरों के बाद ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ होगा क्योंकि आजकल ब्लड प्रेशर हाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का और कनाडा के मामलात का है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था जिद पर है बंदा, कहता है जी मैं टैरिफ कम नहीं करूं।
वो लुटनिक ने कहा है ना कि जब आप उसको अनहैप्पी कर देते हो तो फिर वो बहुत अनहैप्पी हो जाता है प्रेसिडेंट, मतलब तो उसको अनहैप्पी
नहीं करना। खबर क्या पोकेमोन दिलाएं, क्या करें जो आप खबर
वो तो खरीद लिया उसने ना सऊदी ने, अब दे नहीं सकते उनको, क्या सऊदी के दोस्त है शायद उनको दे,
मतलब कि पोकेमोन उनको दे दे, क्या करें जिससे वो अनहैप्पी से हैप्पी हो जाए। या वो मैकडोनल्ड का वो हैप्पी मील आता था, अभी भी
हैप्पी मील मैकडोनल्ड हैप्पी अमेरिकन कंपनी,
मुझे लग रहा है कुछ करना पड़ेगा,
करना पड़ेगा इनको, हैप्पी मील देना पड़ेगा।
इसमें से टॉय भी निकलते,
वो कहता है जो मैं करता जाऊं तुम यस सर कहते जाओ, जैसे कि मोदी जी ने हर बात पे यस सर किया।
मेक्सिको से आज बड़ा खुश है,
हाँ मेक्सिको से और यूके से, हाँ वो कहता है ये
यूरोपीय यूनियन
जो है ये और कैनेडा शैतान है, ये मुझे कहते हैं मैं ना मानू।
देखें जी ट्रंप साहब क्या हाल करते हैं सबका, हाँ। तो जी हुजूर करने वाले लोगों को पसंद है,
पसंद करते हैं
रिबेलियन, यानी हाँ। हम जैसे
और फिर कहते हैं मैं बहुत बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का डेमोक्रेटिक लीडर हूं। भाईजान ये तो डिक्टेटर तरीका है, डिक्टेटर्स वाला तरीका है, हाईवे और हाईवे।
बल्कि मैं कहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं ना अभी तो रमजान में तो मूवी ना देखें, रमजान के बाद वो डिक्टेटर वाली मूवी देखिए, अंग्रेजी वाली,
अंग्रेजी,
यू विल लव दिस, और बस आप ही देखिएगा तो मजेदार, मतलब आपको समझ
आप क्या देखे हो, यानी बीवी बच्चों के साथ, मतलब
आप आराम से जब एंजॉय कर रहे हो फालतू टाइम में तो आप डिक्टेटर मूवी देखिएगा रमजान के बाद, तो आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब समझ आ जाएंगे वो आजकल करके आ रहे हैं। हालांकि उस टाइम पर उन्होंने बदनाम किया था सारे जो लीडरान थे अरब के, और उसमें दिखाया भी वो अरबी है जिसको डिक्टेटर बनाया, लेकिन आज के टाइम पे 2025 में वो फिल्म डोनाल्ड ट्रंप साहब के,
तुम्हें पता है एक बहुत गंदी स्टोरी आई है ट्रंप साहब के बारे में हमारे कनेडियन मीडिया में, वो मैं करना नहीं चाहती थी, उसमें बहुत सारे
टाइम पूरा हो गया, हमारे इंजीनियर जो है पीछे से मैसेज कर रहे हैं जनाब, पूरा हो गया, तो शरद जी शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने का, इंशाल्लाह जिंदगी रही और आप जिंदा रहें
जी,
तो फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तमाम सामईन का नाजरीन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने का, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आरफा मुजफ्फर साहब की तरफ से माजी जमाल साहब की तरफ से हमारे इंजीनियर जिशान अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे, मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब के इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
GTA में पहली बार चांद रात कॉन्सर्ट, सेप्ट कुट्योर और GTA रमदान फेस्टिवल की पेशकश। जश्न चांद रात अंकिता और साथ के साथ GTA के जाने माने सिंगर्स आपकी ईद शाम को यादगार बनाने आ रहे हैं। मनाइए चांद रात का जश्न, मुसीकी, मेहंदी, चूड़ियां, कपड़े, जेवरात, पाकिस्तान और इंडिया के मजेदार खाने, ईद की मिठाइयां और तोहफे और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं। 28, 29 and 30 मार्च रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा, दोपहर 12 से रात 1 बजे तक। फ्री टिकट्स अभी बुक करें और इस शानदार जश्न का हिस्सा बने।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900